سورہ بقرہ میں نا اب ہم انشاء اللہ تعالیٰ جیسے جیسے اب چلتے جا رہے ہیں تو آگے ہمیں یعنی ایون یہ پیچھے سے جب امت وسط کی بات ہو گئی تو اس کے بعد سے اب یہ جو ساری آپ احکامات بھی دیکھیں گے, گائیڈ لائنز دیکھیں گے امت وسط کے لیے, اس میں ایک تو عبادات آئیں گی, عبادات کے اندر جیسے نماز, روزہ, یہ چیزیں ہیں, حج وغیرہ ہیں, تو یہ چیزیں آپ دیکھیں گے ان کے متعلق احکامات, اور ایک معاملات ہیں. معاملات کے اندر آپ یہ جیسے اب آپ نے دیکھا کیا کھانا ہے, کون سی چیز حرام ہے, کون سی چیز حلال ہے, وراثت کے کیا احکامات ہیں, پھر اسی طرح یہ قتل و غارت اگر قتل ہو رہا ہے تو اس کا کیا پھر کیا جائے گا, اس کو کس طرح سے ڈیل کیا جائے گا, یہ ساری چیزیں دیکھیں. آگے قرض کے معاملات ہیں, قرضہ اگر کسی نے کسی کو دے دیا تو اس کا کیا ہوگا, تو یہ سارے معاملات میں آتے ہیں, وہ آپ دیکھیں گے. تو معاملات دیکھیں گے آپ آگے, عبادات دیکھیں گے, پھر جہاد فی سبیل اللہ دیکھیں گے. جہاد میں پھر قتال بھی آ جاتا ہے اور انفاق فی سبیل اللہ بھی آ جاتا ہے, اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بھی آ جاتا ہے, دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. تو یہ امت وسط کی ایک تربیت ہو رہی ہے سمجھنے, کیسے انہوں نے زندگی گزارنی ہے, کیا ان کے لیے احکامات ہیں. تو یہ چیزیں اب ہم انشاءاللہ تعالی ساری دیکھتے جائیں گے. اب ایک اور چیز معاملات میں سے آئی ہے کہ اگر کوئی کسی کا قتل کر دیتا ہے تو پھر کیا ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے, کتب علیکم القصاص, تمہارے اوپر قصاص لکھ دیا گیا ہے. کتب علیکم کے الفاظ دیکھیں نا, یہ آگے بھی آئیں گے, بار بار آئیں گے. قرآن میں کسی چیز کو جب فرض قرار دے دیا جائے نا تو کتبہ کے لفظ آتا ہے. تو کتاب میں نے آپ کو جیسے بتایا نا لکھی ہوئی چیز ہوتی ہے, تو یعنی کتبہ یعنی جو لکھ دی گئی وہ تو طے ہو گئی نا, واجب ہو گئی, تو طے ہو گئی. اب اس کے بارے میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے, کوئی اختلاف نہیں ہے, بس یہ اب تمہاری ایک ذمہ داری ہے تمہارے اوپر, یہ ایک فرض ہو چکا ہے تمہارے اوپر. کیا چیز؟ قصاص. قصاص قصاص یعنی کسی کے پیچھے چلنا. قصے میں بھی آپ یہی کرتے ہیں نا, قصہ سنانا کیا ہوتا ہے, آپ قصہ کوئی سناتا ہے تو اور دوسرا اس کو فالو کرتا ہے اس قصے کو, تو یعنی فالوئنگ کرنے کا نا, کسی کے قدموں کو فالو کرنا, جس کو ہم پیروی کرنا بھی کہتے ہیں. تو قصاص میں کیا ہے کہ قتل کے جو معاملات ہیں ان کو آپ فالو کریں گے, ان کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیں گے, ان کو آپ فالو کریں گے, ان میں آپ نے کوئی سستی نہیں کرنی, کوئی نرمی نہیں کرنی, کوئی کسی کے ساتھ کوئی وہ ایسا نہیں کرنا کہ کسی کو یعنی ڈھیل دے دی, بلکہ اس کو فالو کیا جائے. فی القتلا, مقتولوں کے بارے میں ان کا یعنی بدلہ لینا. اب آپ فالو کر رہے ہیں تو کیا کرتے ہیں, آپ بدلہ لے رہے ہیں نا. جب قاتل کو آپ فالو کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں, مقدمے کو فالو کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں. تو یہاں پہ کیا بتایا گیا کہ یہ بہت سیریس معاملہ ہے اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے. انسانی جان کی حرمت اسلام میں بے حد زیادہ ہے. انسانی جان کوئی ایسے ہی نہیں ہے جیسے آج آپ یہ اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں نا, یہ اسلام کا کانسیپٹ نہیں. اصل میں اسلام کی تو تعلیمات کو ہم بھول ہی چکے ہیں, ورنہ یہ حال نہ ہوتا جیسے ہمارے ہاں کسی انسان کا خون ایک کتے بلی کے خون سے بھی زیادہ سستا ہو گیا. آج انسان کو مارنا تو کچھ رہ ہی نہیں گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جانے کے سے پہلے جو خطبہ حجت الوداع دیا تھا, سارے مسلمان جمع ہو گئے تھے اور سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ لوگوں, تمہارے خون اور تمہارے مال اور تمہاری عزت تم پہ حرام ہے. یعنی ناحق کسی کا خون کرنا یہ حرام ہے. بالکل اسی طرح جیسے آج یوم عرفہ کا دن, ذوالحجہ کا یہ مبارک مہینہ اور یہ مقدس شہر مکہ, جیسے یہ ہے نا حرمت والے, جیسے ان کی عزت ہے, اسی طرح مسلمان کے خون کی عزت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور روایت میں, ایک مسلمان کا خون حلال کرنے والا, یعنی اس کو قتل کرنے والا, یعنی اس نے اپنے اوپر حلال کر لیا نا کہ میں اس کو مار دوں, تمام لوگوں کا قاتل ہے. آپ سوچ لے سکتے ہیں, یہ مسلمان کا خون ایسے ہی نہیں ہے جیسے کہ آج جیسے بہایا جا رہا ہے. اور اس سے بھی زیادہ ایک حدیث ہے جو چونکا دینے والی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خون مسلم اللہ کے کعبے سے بھی زیادہ افضل ہے. اللہ کے کعبے کی آپ کتنی عزت کرتے ہیں بتائیں, کتنی عزت کرتے ہیں, اس طرف پیر بھی نہیں آپ کرنا چاہتے کہ اللہ کا کعبہ ہے, اتنی آپ اس کی عزت کرتے ہیں, اور مسلمان کا خون اس سے بھی زیادہ عزت والا ہے. اور کیا آج اس کی قیمت ہے سوچیں, लेकिन अगर कोई किसी को कत्ल कर देता है तो फिर क्या है? कुतिबा अलैकुमुल किसास, किसास लेना है, बदला लेना है। अब आपकी जो हमदर्दी है, हिमायत है, वो ये नहीं है कि कातिल के साथ हो जाए, क्योंकि कातिल जो है वो हमारी बरादरी का है, कातिल हमारे फैमिली का है, कातिल हमारे मुल्क का है, तो इसलिए कातिल हमारे मजहब का है, तो हम इसलिए उससे तो बड़ी हमदर्दी कर रहे हैं। और मकतूल जो है ना, वो तो दूसरे लोग हैं, दूसरी जुबान बोलने वाले हैं, दूसरे मुल्क के हैं, हमें उनसे क्या? नहीं, आपकी हमदर्दी मकतूल के साथ होनी चाहिए। और अक्सर तो माशरे में क्या होता है, कातिल इतने इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं कि लोग खामखा ही उनके साथ लग जाते हैं, क्योंकि वो इतने अमीर कबीर और बड़े सेठ और बड़े जायदादों वाले जागीरदार होते हैं, तो वो बाकी लोग सिर्फ अपनी बेनिफिट्स के लिए उनके साथ हमदर्दियां रखते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, कुतिबा अलैकुमुल क़िसास फिल क़त्ल। अच्छा, फिर आगे देखिए, एक बात को और ज़हन नशीन करें कि यहूद में क्या था। यहूदियों के अंदर भी इसी तरह की उनकी तौरात में अहकामात थे, जैसे सूरह मायदा में अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने वाजिब कर दिया था उन पर उस किताब में यानी तौरात में, कि देखो जान के बदले जान ली जाएगी, आंख के बदले आंख, नाक के बदले नाक, कान के बदले कान, यानी सारे अज़ा के, दांत के बदले दांत, जिसने जख्म लगाया तो उसका भी किसास है, और जिसने माफ कर दिया तो वो सदका होगा, और ये सदका करने वाले के गुनाहों का कफारा बन जाएगा। तो उन लोगों ने ये जो माफ करने वाला हिस्सा था ना तौरात में, मतलब इस तरह से आयत थी, तो उन्होंने जो ये माफी वाला हिस्सा था वो, उनकी तो तौरात गुम हो गई थी, तो ये उनकी उसमें से मिट गया था, बस ये रह गया था कि कत्ल का बदला कत्ल है, जान का बदला जान है, जख्मों का बदला जख्म है, ऑर्गन, किसी के ऑर्गन काटे हैं तो उसका बदला उसी का ऑर्गन ऐसे ही काटना है, तो उनमें माफी का तो रह ही नहीं गया था। ईसाइयों में क्या था, वो दूसरी एक्सट्रीम पे चले गए, उन्होंने कहा बस माफी माफी होनी चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए, और किसी को तो सजा ही नहीं मिलनी चाहिए, तो जान तो लेना चाहिए ही नहीं। इसीलिए आप देखते हैं कई स्टेट्स में अब डेथ सेंटेंस भी खत्म कर रहे हैं, कईयों में हो चुका है, कईयों में करने की कोशिश करते हैं, तो कि भाई ये बड़ा जुल्म है किसी को डेथ देना। तो लेकिन इस्लाम क्या कहता है, सजा तो एक को मिलेगी, इबरत लाखों हजारों को आ जाएगी, उनके रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए कि हम कभी ये काम ना करें, वरना तो जुर्म आम हो जाएगा। तो यहूद एक एक्सट्रीम पे चले गए, उन्होंने कोई बीच में का रास्ता रखा ही नहीं, उन्होंने कहा बस कत्ल का बदला कत्ल है, नसारा एक दूसरी एक्सट्रीम पे चले गए। अरबों में एक और तरीका, वो क्या करते थे, वो हमारे जैसे आज जैसे हम जाहिल है ना, हम भी उन्हीं के जमाने में रहते हैं अभी भी, कि वो क्या करते थे, अगर एक अमीर है उसने एक गरीब को कत्ल किया, तो फिर तो अमीर का तो जाहिर है फिर वो एक ही कत्ल उसका हुआ, लेकिन अगर किसी गरीब ने अमीर को कत्ल कर दिया तो गरीब एक का नहीं मारेंगे, फिर उसकी एक से ज्यादा को मारेंगे, क्योंकि ये तो गरीब था ना। ठीक है, इसी तरह अगर औरत ने मर्द को कत्ल किया तो औरत को तो कमतर समझते थे, तो अब एक औरत को नहीं मारेंगे हम, इसके साथ औरों को भी लेके जाएंगे। आज भी हमारे यहाँ देखें इतनी जहालत है, एक बंदा कत्ल करता है, अब वो तो भाग गया, उसके बाद क्या हुआ, उसके पूरे खानदान को उल्टा लटका दिया, उनको कत्ल कर दिया, अब उनका कोई कसूर भी नहीं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, तमाम मुसलमानों के खून आपस में बिल्कुल बराबर है, यानी चाहे औरत है मर्द है, बूढ़ा है जवान है, या जालिम है और मजलूम है, या आलिम है और एक जाहिल है, या कुछ भी है, सब मुसलमानों के खून बराबर है। इस तरह से नहीं है कि भाई किसने कत्ल किया तो अब अगर वो कोई नौकर है जिसने कत्ल किया तो अब नौकर को अकेले को नहीं कत्ल करना, अब इसके साथ इसके बेटे को भी कत्ल किया जाएगा, क्योंकि इनकी जुर्रत कैसे हुई, ये नहीं होगा। इसी चीज को यहाँ पे बताया गया, अल हुर्रु बिल हुर्री वल अब्दु बिल अब्दी वल उन्सा बिल उन्सा। इसका माना क्या है, यानी कि अगर आजाद आदमी ने कत्ल किया तो उस आजादी को उसके बदले में कत्ल किया जाएगा, गुलाम कत्ल हो तो गुलाम ही कत्ल किया जाएगा, यानी औरत इस जुर्म को करती है तो उस औरत से ही बदला लिया जाएगा। समझ आई बात, यानी आजाद ने कत्ल किया है तो अब ये नहीं है कि ये मैं तो आजाद हूं और मैंने अगर कत्ल किया है तो मेरे गुलाम को पकड़ के ले जाओ, और इसको मेरी जगह कत्ल कर दो, नहीं ये नहीं होगा, कातिल ही कत्ल होगा, और अगर गुलाम ने कत्ल किया तो गुलाम ही कत्ल होगा। ये नहीं कि हाय ये बेचारा गुलाम है इसका क्या, औरत ने कत्ल किया तो औरत ही कत्ल होगी, ये नहीं कि मर्द को उसकी जगह उसके शौहर को भी कत्ल किया जाए, यानी जुर्म जिसका है उसी को पकड़ा जाएगा। फमन उफिया लहू, तो जो कोई माफ कर दिया गया, लहू लिए उसके, मिन अखी ही उसके भाई की तरफ से, उसके भाई ने उसको माफ कर दिया, शई उन कोई चीज। अच्छा भाई कौन है, किसको भाई कहा जा रहा है, देखिये ये बहुत एक सुभान अल्लाह बहुत एक गौर करने की बात है। भाई किसको कहा जा रहा है, जिसको माफ कर दिया गया उसके भाई की तरफ से, उसके भाई की तरफ से कातिल को माफी मिल गई। ये आपको समझ लेना चाहिए कि इस्लाम में हकूमत मुदई नहीं होती, एक मुदई होता है ना, एक डिफेंडेंट होता है, तो हकूमत नहीं होती, वो मकतूल के वरासा होते हैं, जिसको कत्ल किया उसके वरासा होते हैं। आज तो क्या है ना कि अब मकतूल के वरासा चाहे कह भी दें हमारी तरफ से इसको माफ कर दें, हमने माफ कर दिया, तो हुकूमत नहीं छोड़ेगी, वो कहेगी हमने तो पकड़ना है, हमें तो सजा देनी है। ये नहीं है इस्लाम में, क्या है, हुकूमत की अथॉरिटी बस इतनी है कि वो इन्वेस्टिगेट करे, सही मुजरिम को पकड़े, उसको लेकर आए, उसको वहां तक मतलब पेश करे, उसको जो सारा उसको मतलब है जुर्म साबित हो रहा है, तो अब आगे उसकी जिंदगी का फैसला ये इनके हाथ में, मकतूल के जो वारिस है, चाहे तो वो कहें कि हमें किसास चाहिए, नंबर वन ऑप्शन लिख लेंगे, ऑप्शन नंबर वन ऑप्शन उनके पास क्या है, अब तीन है ऑप्शंस, उनमें से कोई भी एक वो चूज कर सकते हैं। नंबर वन क्या है, वो करके किसास चाहिए, हमें हमारा जो कत्ल हुआ है बंदा उसके बदले में इसको इसकी जान चाहिए, नंबर वन ये ऑप्शन। नंबर टू ऑप्शन खून बहा, खून बहा या दियत उसको कहते हैं, और वो क्या है कि हम इसके बदले में उतने मतलब पैसे ले लेंगे, और ये क्या है दियत भी, यानी डिटरमिन की भी है इस्लाम ने, और वो क्या है 100 ऊंट एक जान की कीमत, या तो 100 ऊंट के बराबर उसका दिया जाए, या फिर दीनार, उस वक्त सोने के सिक्के होते थे, 1000 दीनार जो आज 4 किलो सोना होता है तकरीबन, या फिर दिरहम, चांदी के दिरहम होते थे, चांदी के सिक्के 10,000 चांदी के सिक्के जो आज 30 किलो चांदी है, ठीक है, तो ये अदा की जाए, इसको किस्तवार भी कर सकते हैं थोड़ी थोड़ी करके, अगर एकदम नहीं कोई दे सकता, लेकिन दे कैन चूज दिस कि हमें दियत, हम दियत लेने के ऊपर राजी हो जाते हैं। नंबर थ्री ऑप्शन ये कि हमने ऐसे ही माफ कर दिया, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ना हमें दियत चाहिए तो ना हमें किसास चाहिए, हमने बस माफ कर दिया। अगर कोई ऐसे माफ कर देता ना तो ये भी उसके गुनाहों का कफारा है। तो इस माफी को यहाँ पे कहा गया है फमन उफिया, ये जरा समझ लें अच्छी तरह बात को, क्योंकि ये फिर आपको बाद में हो सकता है समझ खुद से ना आए। फमन उफिया लहू मिन अखीही शैउन, जो माफ कर दिया गया वास्ते उसके भाई के, भाई कौन है, मकतूल के वारिस, अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि मकतूल के वारिस हैं, वो भी तुम्हारे भाई हैं, तुम आपस में भाई भाई हो, चाहे अगर एक ने कत्ल कर भी दिया है, देखिए कितना एक चुन के लफ्ज यहाँ पे लाया गया अखी का, चाहे एक ने दूसरे के को कत्ल भी कर दिया है, लेकिन वो इस्लाम से खारिज नहीं हो गया, कोई भी गुनाहे कबीरा करके, कत्ल करके, जिना करके इस्लाम से नहीं निकल जाता, हम तो फौरन कह देते ये कौन से मुसलमान है, ये तो मुसलमान ही नहीं, आप कैसे कह सकते मुसलमान ही नहीं, आप उनके इस्लाम से निकलने का फतवा कैसे दे सकते हैं कि नहीं ये तो काफिर है क्योंकि इन्होंने कत्ल किया, नहीं, चाहे कोई कातिल ही क्यों ना हो वो इस्लाम से नहीं निकल जाएगा, वो फिर भी तुम्हारा भाई है। तो मकतूल के वरसा के पास उनको कहा, उनके लिए कहा गया है कि वो अगर माफ कर दें इसको कातिल को कुछ भी, यानी क्या कुछ भी, यानी चाहे तो ऐसे ही माफ कर दें, नंबर टू दियत लेके माफ कर दें, ठीक है, तो फत्तिबाउन, तो पैरवी करना है बिल मारूफ, अच्छे तरीके के साथ इसकी पैरवी करो, यानी मारूफ क्या है कि यानी जितनी दियत लिखी है उतनी दो, जिस तारीख पे देने का वादा किया उतना उस तारीख पे दे दो। ये नहीं अगर दिया था, अगर 100 ऊंट है तो अब जो है ना बूढ़े बीमार ऊंट दे दिए जो बिल्कुल मरने के काबिल हुए में, नहीं अब इसकी पैरवी करो यानी फॉलो करो। अब उनको कहा जा रहा है जो कातिल के वारिस हैं या कातिल हैं उस उनको कहा जा रहा है कि अब तुम्हारी ये जान बख्शी हो गई, अगर उन्होंने दियत लेने पे राजी हो गए हैं तो अब इसके बाद क्या तुम्हारा जरूरी है कि तुम मारूफ तरीके साथ अच्छे तरीके के साथ ये सारा मामला निपटाओ। वह अदा उन इलैही भी एहसान, और अदा करना तरफ उसकी साथ एहसान के, यानी मकतूल के वारसों को जो दियत है वो अदा करो एहसान के साथ। एहसान ये नहीं कि उनके ऊपर एहसान करके कि हम तुम्हें ये दे रहे हैं, वो नहीं। एहसान का मतलब क्या होता है? बेहतरीन तरीके से, आसान तरीके से, उम्दा तरीके से, यानी आप उनका उनका एक ये भी है कि उनकी तरफ से एक इसको भलाई समझे कि उन्होंने जान बख्शी कर दी। ये उनकी तरफ से बहुत बड़ी बात है, अगर वो चाहते तो खून का बदला खून मांग लेते। और ये भी नहीं कि हकारत से उनके मुंह पे दे मारो, ताने दो, ये करो, नहीं। ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ, ये है तुम्हारे रब की तरफ से रायत की हुई है, कमी की हुई है अल्लाह ताला ने, और रहमत है। ये अगर क़िसास ही सिर्फ होता जैसे यहूद में है तो फिर तो हर कत्ल के बदले में कत्ल ही होता, लेकिन अल्लाह ताला ने ये दो और ऑप्शंस रख के मुसलमानों को तुम्हारे ऊपर एक कमी की आसानी कर दी, और अल्लाह की रहमत है ये। فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ, जो कोई ज्यादती करे इसके बाद भी तो उसके लिए तो बहुत दर्दनाक अजाब है। और ज्यादती कैसे हो सकती है? अगर मसलन किसी ने दियत भी ले ली है, दियत ले के खून बहा ले के उसके बाद कत्ल कर दे जाके उसको, या कहे कि हमने तो माफ कर दिया, उसके बाद थोड़े दिन बाद उबाल आया फिर जाके कत्ल कर दिया। अब ये कातिल बन गए ना, मकतूल के वारसों में से एक कातिल बन गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी इससे तो फिर दियत ली ही नहीं जाएगी, इसका तो किसास ही है, फिर इसको कत्ल ही किया जाएगा। तो क्या समझ आई आपको इससे? फमन उफिया से क्या समझे? एक तो पहली हमें ऑप्शन क्या पता चली कि किसास लेना इस्लाम में है एक ऑप्शन, और ये किसास उसी से लिया जाएगा जिसने कत्ल किया हो। ये नहीं है कि कत्ल किसी ने किया, पकड़ के जाके किसी और को तो उसको मार दिया, उसको उल्टा लटका दिया, ठीक है। दूसरी क्या चीज है कि ये माफ करना, फमन उफिया लहू मिन अखी ही, उसके भाई की तरफ से जो माफ उसको कर दिया जाए, तो इसका मतलब है हुकूमत का काम नहीं है कि कोई कातिल है तो वो प्रेसिडेंट को भेज दे अपनी रहम की अपील के जी मुझे फांसी से छुटकारा दे दिया जाए, और जो सदर है वो दस्तखत करके भेज दे और कहे कि मैंने माफ कर दिया। उसका कोई राइट नहीं है। राइट किसका है? मकतूल के वारसों का, कि चाहे तो कहें कि नहीं हमें खून का बदला खून ही चाहिए। एक तरह से वाकयात होते भी हैं सऊदी अरब में, क्योंकि ये कानून है, तो ऐसे एक वाकया हुआ था कि बिल्कुल उसको फांसी लगाने लगे थे और उस वक्त मकतूल के वारसों में से एक ने उठ के कहा कि नहीं हमने इसको माफ कर दिया, यानी इसको बिल्कुल ले जा रहे थे फांसी के लिए। तो मकतूल के वारसों में से कोई एक भी उठ के कह सकता है कि मैंने माफ कर दिया, तो माफ हो जाएगा सबकी तरफ से। और जो दियत होगी उसका क्या है? अगर कोई एक माफ नहीं करे और दूसरे ने माफ कर दिया, एक को अगर दियत चाहिए तो उसको दियत दे दी जाएगी। दियत कैसे होगी तकसीम? जैसे विरासत तकसीम होती है ना, और उसमें वारसों के हिस्से हैं, उसी तरह। तो ये याद रखें, तो क्योंकि हुकूमत का काम किस लिए नहीं है, ना कोई सदर, ना कोई वजीर, ना कोई कुछ रहम की अपील को एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए क्योंकि अल्लाह ताला ने कयामत के दिन भी तो देखे ना, जो हकूक उल इबाद का फैसला है वो किसके हाथ में होगा? जिसका हक मारा गया उसके हाथ में होगा। तो यहाँ पे कैसे किसी और का राइट हो सकता है? अल्लाह ताला ने राइट वारसों को दिया है, उनकी मर्जी है। अब हमारे मुल्कों में चूंकि ये कानून इस तरह से नाफिज नहीं होते तो कोई भी नहीं माफ कर सकता। और जहां पे हमारे यहाँ इस कानून को चलाना होता है वहां पे ये हाल हो जाता है कि कई बहुत असर और रसूख वाले लोग होते हैं, और वो फिर दबाव डाल के भी कहते हैं बस दियत ले लें और हमें छुड़ा ना जाए, क्योंकि हम इतने बड़े, इतना प्रेशर उनको डालते हैं कि वो बेचारे اور کچھ نہیں تو ان کو اپنی جان کا خطرہ پڑ جاتا ہے، وہ دیت ہی لینے پہ راضی ہو جاتے ہیں. اسی طرح ایک اور بہت ہی بری چیز ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی دیت لینے پہ راضی ہو ہی جائے، اللہ تعالیٰ نے تو کتنی بڑی اس میں دیکھیں خیر ایک رکھی ہے. اگر صرف دیکھیں جان کا بدلہ جان ہوتا تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو مقتول جن کا کوئی قتل ہوا ہے اس وہ اتنی بری فائنینشیل سچویشن میں آ جاتے ہیں کہ آپ کبھی سنتے ہیں نا کہ وہ اپنے گھر کا واحد کفیل تھا، ایک ہی یعنی کمانے والا تھا، یا وہ اپنی پانچ بہنوں کا ایک ہی بھائی تھا، یا ان کے اس کے اوپر گھر کا سارا وہ چل رہا تھا. اگر وہ دنیا سے چلا جاتا تو پیچھے گھر والوں کے لیے بہت ہی تنگ حالات ہو جاتے ہیں. ایسے میں اللہ تعالیٰ نے دیت رکھ کے، ٹھیک ہے ان کا لاس کمپنسیٹ نہیں ہو سکتا کبھی، لیکن ٹو سم ایکسٹینٹ جو فائنینشیل ان کے اوپر ایک بہت بڑی ایک سچویشن آ جاتی ہے تنگی کی، ایٹ لیسٹ اس میں تھوڑا سا ان کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے دیت کے ذریعے. تو دیت اگر کوئی دیت پہ راضی ہو جاتا ہے تو یہ بھی ایک طرح کی معافی ہی ہے، پمانا اوفیا میں نا دونوں ہی ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک معافی ہے نا، خون تو معاف کر دیا نا، جان تو نہیں لی نا، تو جان کو معاف کر دیا، اب چاہے پیسے لیں اس کی جگہ پہ، اتنا سونا لے لیں، اتنا وہ لے لیں، یا پھر ویسے ہی معاف کر دیں، وہ ان کی اپنی مرضی ہے. مگر یہ رائٹ، یہ آپشن ٹوٹلی صرف مقتول کے وارثوں کے پاس ہے. اور دیکھو تم ایک دوسرے کو پھر بھی بھائی سمجھو، چاہے اگر وہ قاتل بھی ہے، اور پھر اچھے طریقے سے اس کا اتباع کرنا، خوبصورتی کے ساتھ معاملہ کرنا، اور احسان مانو کہ تمہاری جان بخشی کر دی انہوں نے، عمدگی کے ساتھ معاملہ کرو. اگر جو حق ہے اس سے بھی زیادہ دے سکتے، احسان میں تو یہ ہے نا حق سے بھی زیادہ دینا، اگر جو ان کا حق بنتا ہے اگر اس سے بھی زیادہ دے سکو تو دو. اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے. اب وہ بندہ تو واپس نہیں آ سکتا، لیکن جو ان لوگوں کی فائنینشیل جو کرائسس میں وہ چلے جاتے ہیں وہ کچھ حد تک نکل سکتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں اس کا بھی کیا ہوتا ہے. آپ کو پچھلے دنوں پتہ چلا ہوگا، کچھ سالوں بھی پہلے دیت کے مسئلے مسائل بہت زیادہ ڈسکس ہو رہے تھے، کیونکہ کچھ ایک آدھ ایسے واقعات ہوئے جس میں دیت لے لی گئی. تو چونکہ دوسری طرف قتل کرنے والے بہت انفلوئنشیل لوگ تھے، تو لوگ نا بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں، اسلام پہ بھی اعتراض کرتے ہیں اور پھر ان لوگوں پہ بھی اعتراض کرتے ہیں جو گھر والے ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں انہوں نے تو ان کا خون بیچ دیا، دیکھو انہوں نے کیا کر دیا، پھر کیا فائدہ تھا. نہیں تو یہ ان کا ٹوٹل رائٹ ہے، وہ اگر چاہیں تو قصاص مانگے اور چاہیں تو دیت لے لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن لوگ اس کو اتنا برا کر کے دکھاتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے بدلہ نہیں لیا اور پیسے کھا گئے اپنے رشتے دار کے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی ہے، اللہ نے یہ احکامات رکھے. تو اللہ تعالیٰ نے تو تمہارے تخفیف کر دی نا، بوجھ ہلکے کر دیے تمہارے، لاس کمپنسیٹ کر دیے. اور دیکھیں کتنی ایک بڑی بات ہوتی ہے، قتل در قتل کا سلسلہ رک جاتا ہے، اس میں تو خیر ہی ہے. اسی لیے آگے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اس میں تو تمہیں سمجھ نہیں آتی، لیکن تمہارے لیے تو اس میں زندگی ہے قصاص لینے میں، اے عقل والو، تاکہ تم بچ سکو. آپ کو نہیں پتا، یہ جو لوگ آج کہتے ہیں نا یہ ظالمانہ سزائیں اسلام کی، دیکھو کہ بھائی وہ اگر خون کسی نے کیا اس بیچارے کو لٹکا دیتے ہیں، اب کیا فائدہ ہوا، اب وہ اس کا تو واپس نہیں آ سکتا، اب اس کو چھوڑ دینا چاہیے، ویسے ہی نفسیاتی مریض ہوتے ہیں، دیکھو ایسے ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں، کتنی باتیں کرتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں زندگی ہے، معاشرے کی زندگی، آپ کو نہیں پتا کتنی جانیں بچ جاتی ہیں اس سے. دیکھیں اگر یہ ہوتا کہ معاف کر دیا جاتا اور یہی آپشن رکھی جاتی جیسے عیسائیوں میں ہے، تو پھر تو کوئی ڈرتا ہی نہیں، ہر ایک نے نہ ڈر ہو جانا تھا کہ بھئی ہمیں کون سا کسی نے پکڑنا. جب قصاص ہوگا تو دوسرے کو ڈر ہوا کہ اگر میں نے ہاتھ اٹھایا تو مجھے میری اپنی جان بھی چلی جائے گی، میں خود بھی نہیں بچ سکتا. تو اس لیے انسان کو یہ خوف جو ہے نا پھر اس کو ہاتھ اٹھانے سے روکتا ہے. ایک جان چلی جائے لیکن کتنی جانیں بچ جائیں گی، ایک کو سزا ملے گی، سوچیں کتنے لوگ رک جائیں گے، آئندہ کبھی ایسی جس کا سوچیں گے نہیں، کوئی خیال بھی آئے گا ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. دیکھیں جن ملکوں میں یہ سزا نافذ ہے نا، وہاں پہ کرائم ریٹ کتنا کم ہے ایسا قتل کا، پتہ ہے لوگوں کو ہم نے کیا تو ہم بھی جائیں گے جان سے، اور جہاں پہ یہ نہیں ہے قوانین وہاں پہ دیکھیں آج کیا حال ہے. कोई मार रहे हैं, कत्लो गारत कर रहे हैं या खून बहा रहे हैं, कोई फिक्र ही नहीं। इसलिए कि पता है कि हमने तो छूट ही जाना है, हम रिश्वत लेके छूट जाएंगे, दे के छूट जाएंगे, हम असरो रसूख अपना इस्तेमाल करेंगे अपने कॉन्टेक्ट, तो हम तो हमें कौन पकड़ सकता है। तो याद रखें ये ऐसे ही है जैसे किसी के किसी मरीज को गैंग्रीन हो जाए ना, तो वो पैर जिससे वो चलता है उसी को काट दिया जाता है ना। हालांकि उसके जिस्म का एक ऑर्गन है ना, और कितना जरूरी है उस ऑर्गन का रहना, लेकिन चूंकि बीमारी लग गई तो उसको काट दिया गया इस ताकि सारा जिस्म तो बच जाए ना। इसी तरह ये सजा है, ये सख्त सजा है, लेकिन इसके जरिए ही माशरा बच सकता है। अगर सोसाइटी को बचाना है इस क्राइम से तो ये करना होगा। और देखें आज हमारे यहाँ क्या हालात हैं, हमारे यहाँ ये हाल है कि हम खुद इस जुर्म को या इस जो ये कत्लो गारत है इसको हमारे यहाँ खुद फरोग देने के लिए कितनी चीजें हैं। जुर्म को इतना हल्का करके दिखाया जाता है, अल्लाह ताला ने तो इस जुर्म को इतना संगीन बताया कि देखो उसकी जान ली जाएगी और उसके साथ ऐसे होगा और किसास में जिंदगी है, जबकि हमारे यहाँ क्या होता है आप ये देख लें, ऐसे ऐसे प्रोग्राम दिखाए जाते हैं जिसमें कत्लो गारत को बाकायदा दोबारा एक्ट करके दिखाया जाता है और उसको इतना ज्यादा दिखाया जाता है क्राइम्स को कि जुर्म जो है आम हो जाता है इस वजह से, क्योंकि देख देख के वो चीज कोई बड़ी नहीं रहती। हर रोज ये खबर है अगर कि इतने खून हो गए, इसने उसको कत्ल कर दिया, उसने तो कल को कोई बात इसके ऊपर बॉदर ही नहीं करेगा। जिन मुल्कों में ऐसा नहीं होता वहां पे कभी ऐसी कोई खबर आ जाए तो सब लोग चौंक जाते हैं, सहम जाते हैं कि ये क्या हो गया, और जहां पे रोज का ये काम हो वहां पे इसकी शर्म ही उठ गई है। अब इंसानी जान लोगों को कोई कीमती नहीं रहती। दूसरी तरफ देखें ऐसी मूवीज जिनके अंदर जो इनको एक्शन थ्रिलर ये कहते हैं उसमें भी इतना कत्लो गारत दिखाया जाता है कि इंसानी जान की कोई हुरमत ही नहीं है, जैसे कि इंसानी जान कोई कीमती नहीं है। 10 को उड़ा दिया, इतने को मार दिया, उतने को कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आप तीसरा देखें आपके जो बच्चों की गेम्स हैं उनमें इस तरह से दिखाया जाता है कि इंसानी जान ली जा रही है और कोई मसला ही नहीं है, बल्कि गेम में ही बच्चे वो चीज खेलते हैं कि हम मार रहे हैं, हम शूट कर रहे हैं। और उसके बाद आप देखिए आज यहाँ पे ये जो स्कूलों के अंदर शूटिंग्स होती हैं, कितने ही सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो ये गेम्स देख देख के और वो इतने ज्यादा थ्रिल्ड होते हैं कि अब वो चाहते हैं कि हम ये खुद करके देखें कि कैसा लगता है। मैं आप सबको कहूंगी कि अपने बच्चों को ऐसी गेम से दूर रखें जिनमें कतरो गारत गिरी हो, ब्लड शेड हो और उनके लिए खून की कोई हुरमत ही ना हो। देखिए अल्लाह ताला ने तो कुरान पाक में क्या फरमाया है कि जिसने एक इंसानी जान को लिया तो उसने गोया पूरी इंसानियत का कत्ल किया, एक इंसानी जान का। और अगर किसी ने एक इंसानी जान को बचाया तो उसने गोया पूरी इंसानियत को बचा लिया। तो आप देखें कि ये इंसानी जान कोई मामूली बात नहीं है। तो इस तरह की हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो सोसाइटी में इस तरह के रोजानात पैदा होते हैं या ऐसी चीजों को मामूली समझा जाता है, इसके लिए कोशिश करें कि हम अपना रोल प्ले करें इसमें कि हम किस तरह इन चीजों को इतना लाइट ना बना लें और इतना लाइट होने ना दे, बल्कि इसको एक बहुत बड़ी बात बताई जाए कि ये क्या है। क्यामत के दिन सोचे सबसे पहले खून के बारे में फैसला किया जाएगा, मकतूल अपना सर लेकर आएगा अपने हाथ में और पूछेगा कि अल्लाह ये इस फलाने बंदे ने मुझे कत्ल किया, उनका सबसे पहले मामला यानी फैसला होगा। ये देख लें कि कातिल की जिंदगी लेके सारी सोसाइटी को जिंदगी मिल गई, कातिल खुला फिरेगा तो सब खौफजदा रहेंगे कि पता नहीं इसने एक के ऊपर हाथ उठाया, पता नहीं कल दूसरे के ऊपर किसको मार दे। अच्छा आगे अब वसीयत की बात आ रही है, अगली जो आयत है, वैसे तो ये आयत क्योंकि अल्लाह ताला ने विरासत के अहकामात नाजिल कर दिए जो कि हम इंशाल्लाह ताला आगे पढ़ेंगे, तो अब ये आयत मंसूख हो गई। पहले ये होता था कि लोग खुद ही वसीयत करते थे किसको कितना हिस्सा मिलेगा, किसको कितना हिस्सा मिलेगा। जो हमारे आजकल कुछ सादा लोग जिनको दीन का पता ही नहीं है वो भी बूढ़े हो जाते हैं तो कहते हैं फलाने को इतना मिल जाए, फलां को इतना मिल जाए, यानी वो समझते हैं कि हमने शायद हिस्से करने, ये इस्लाम से पहले की बात है कि जिससे लोग किया करते थे खुद से। अब अल्लाह ताला ने जब विरासत के अहकामात नाजिल कर दिए, अब किसी को जरूरत नहीं है कि वो खुद हिस्से करे, अल्लाह ताला ने खुद हिस्से कर दिए। बेटी का कितना होगा, बेटे का कितना होगा, माँ बाप का कितना होगा, बहन भाई का कितना होगा, हर एक के हिस्से मुकर्रर कर दिए, उनको कोई छेड़ नहीं सकता। अब आपका क्या है, आप सिर्फ वसीयत कर सकते हैं। वसीयत किस में कर सकते हैं, टोटल उसमें नहीं बल्कि 1/3 में, आपके जितने भी एसेट्स हैं, कैश है, गोल्ड की सूरत में है, जायदाद की सूरत में, उस सारे का 1/3 जो है उसमें सिर्फ आप वसीयत कर सकते हैं। उसके अलावा किसी को भी ये अलाउड नहीं है कि वो खुद से हिस्से करे मुकर्रर। वारसों के हिस्से अल्लाह ताला ने खुद मुकर्रर कर दिए। तो अब ये आयत हम देख लेते हैं। कुतिबा अलैकुम इदा हदर अहदकुमुल मौत, लिख दिया गया तुम्हारे ऊपर जब हाजिर हो, यानी जब आने लगे किसी के ऊपर मौत के आसार तारी होने लगे या मौत के आसार शुरू हो जाएं, उस किसी को पता चल जाए कि बस मेरा अब चल चलाओ का वक्त है, कि क्या करे, कि अहदकुमुल मौत इन तरह का खाइरन अल वसीया, कि अगर वो छोड़ जा रहा है माल को, वसीयत करना उसके लिए जरूरी है कि फिर वो वसीयत कर दे। किसके लिए, लिल वालिदैनी वल अक्रबीना बिल मारूफ, वालदैन के लिए भी और रिश्तेदारों के लिए, अच्छे तरीके के साथ, अच्छे मामले के साथ, फेयर एक डीलिंग करके, इनके हिस्से हिस्से करके दे दे उनको, यानी दे दे नहीं, उनके लिए मुकरर कर दे। हक्कन अल मुत्तकीन, ये हक है मुत्तकीन पे। यानी पहले क्या होता था कि ये पहले ताकीद की गई कि जब मौत का वक्त करीब हो तो फिर वसीयत कर जाओ, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया, अब आप माल में, अपने टोटल माल में नहीं वसीयत कर सकते, अब सिर्फ आप 1/3 में वसीयत कर सकते हैं, और वो भी अल्लाह ने वारिसों के हिस्से मुकरर कर दिए। वारिसों के लिए वसीयत नहीं हो सकती, ये याद रखिए। आप ये नहीं कह सकते कि जो 1/3 है ना वो भी मेरे फलां बेटे को मिल जाए, इसने मेरी बड़ी खिदमत की है, और फलां है मेरी बच्ची के हालात बड़े खराब है, उसको मिल जाए, नहीं ये नहीं कर सकते आप। वसीयत आप गैर वारिस के लिए कर सकते हैं, मसलन आपने को आपका कोई अडॉप्ट आपने किया हुआ था बच्चा, वारिस तो नहीं है वो, लेकिन अब आप उसको देना चाहते हैं तो 1/3 में से आप दे सकते हैं, या आप कोई खैरात करना चाहते हैं, या किसी इदारे को डोनेट करना चाहते हैं, या कुछ करना चाहते हैं, तो वो 1/3 में से आप करेंगे। वसीयत वारिस के हक में नहीं की जा सकती, समझ आ गई ना बात। और अगर किसी के पास कोई चीज है जिसकी उसने वसीयत करनी है, तो उसके पास 3 रातें ऐसी नहीं गुजरनी चाहिए कि जो बगैर वसीयत किए वो गुजार दे। यानी अब मेरे दिल में कोई इरादा है कि मैं फलां को ये डोनेट कर दूं, ये अपनी 1/3 में से, अपनी जायदाद में से, तो फिर मुझे जल्दी करनी चाहिए वसीयत करने में, कहीं कागज पे लिख दें, किसी को कह जाएं, कुछ जरूर कर दें, ताकि ये ना हो कि जिंदगी का कोई पता नहीं है, दुनिया से चले जाए और दिल में ही रह जाए बात। कई लोग ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं कि ना बोल सकते हैं, ना कुछ लिख सकते हैं, आखिरी वक्त में वो चाहते हैं कि कुछ बताएं, कुछ वसीयत कर दें, लेकिन अब टू लेट हो चुका होता है, तो फिर लेट नहीं करना चाहिए इसमें। अब वसीयत देखें, जरूरी नहीं वसीयत आप फिर माल के बारे में ही करें, आप वसीयत और भी कर सकते हैं। मसलन है, मेरे ऊपर इतना कर्जा आया, ये कर्जा अदा कर देना, मैंने हज नहीं किया, मेरे पीछे से मेरे पैसों से हजे बदल कर देना, या मेरे इतने रोजे रह गए हैं मेरे वारसों, तुम लोग इतने रोजे रख लेना, को भी, या कोई और जिम्मेदारी आपने उनके ऊपर डालनी है, फलानी मेरी चीज की देखभाल, या फलान मेरे काम की देखभाल, या कोई आप ऐसा काम करते हैं, आप सोचते हैं कि इसकी जिम्मेदारी मैं फलां को दे के जाऊं, उसकी वसीयत कर सकते हैं। तो ये सारी वसीयत ही है, ताकीद है। लेकिन अब क्या है, आप देखें कई लालची लोग होते हैं, उन्हों को पता चल जाता है कि जब ये वसीयत के अंदर हमारा तो इतना हिस्सा नहीं लिखा गया, तो हम जरा अपना बढ़ा लें हिस्सा, दूसरे का कम कर लें, वसीयत के कागजात तो मेरे पास ही हैं, देख लिया, उसमें से पढ़ लिया और उसमें से चेंजिंग कर दी। उसके बारे में अगली आयत देखें, फमन बदलहु बादमा समयहु फइन्नमा इत्मुहु अलल लदीना युबदिलूनहु, जिसने बदल दिया इसके बाद कि जो उसने सुना था, इसका मतलब वसीयत जरूरी नहीं कि किसी ने लिखवाई हो, अगर किसी ने सुना भी हो, किसी ने किसी को कहा कि मेरी वसीयत है कि मेरा ये जो फलाना घर है वो फलां इदारे को दे दिया जाए, तो अब जो सुनने वाला है वो बदल दे, और वो कहे कि नहीं, वो कह गई थी कि मुझे ही दे दिया जाए, कुछ भी कह सकता है, बदल दी उसको हा? तो अब क्या है, तो इसका गुनाह वो मरने वाले पे नहीं है, क्योंकि उसने तो बेचारे ने अपनी तरफ से सही कहा था, ये जो जिसने बदली है वो ये याद रखे कि मरने वाला तो दुनिया से चला गया, लेकिन इन अल्लाह समीउ अलीम, अल्लाह तो सुनने वाला और जानने वाला है ना, अल्लाह ताला को तो पता है ना जो तुमने बदल दी। इसका मतलब वसीयत का भी एहतराम करना चाहिए, वसीयत जो किसी ने की है उसके मुताबिक उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए। ये भी गुनाह है कि खुद ही वसीयतें चेंज करते रहें, जैसे वो कह गया वैसे करें। लेकिन आप देखें कभी कभी ऐसे भी होता है कि जो मरने वाला है वो कुछ उल्टी उल्टी वसीयत कर जाता है, किसी गुनाह के काम की वसीयत कर जाता है कि भाई फलां दरबार पे मेरा इतना वो दे देना, फलां चीज ऐसे कर देना, कोई इस तरह की शिर्क की हो सकती है या जो कोई गुनाह की हो सकती है या ऐसी हो सकती है। मसलन आप जैसे मैंने आपको बताया कि वारिस है, बेटा तो वारिस है, उसको हक मिल रहा है, विरासत में से ही मिल रहा है, लेकिन अब इसने भी वसीयत कर दी कि इस मेरे बेटे को, क्योंकि उसने मेरी बड़ी खिदमत की है या ये मेरा बड़ा लाडला है या इसके हालात नहीं से, इसको इजाफी तौर पे इतना कुछ दे देना, तो ये क्या है, तरफदारी है, साइड ले ली ना इसने, या फिर कोई गुनाह का काम कर दी। तो अब क्या है, अब ये नहीं है कि वसीयत इतनी सीक्रेट है, ओहो वसीयत को हाथ नहीं लगाना, ये कभी चेंज नहीं हो सकती, या कोई कह दे मैं यहाँ पे मरूंगी तो मुझे ना पाकिस्तान ले जाकर दफनाना। अब आपको पता है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो फिर कितना इस चीज का उनको भी एक, यानी जो मैंने पहले भी आपको बताया कि क्या तरीका कार है बॉडी को ले जाने का, तो कितनी ये एक अजियत है और इसमें कितना इंसान का सतर खुलता है और एक औरत का, और किन मराहिल से गुजरते हैं वहां तक पहुंचने के लिए, तो आप पता है वारसों को, तो फिर ऐसी वसीयत को ना एग्जीक्यूट करें। ये नहीं बस कहना कि नहीं नहीं बस हमारी अम्मी ये कह गई थी, बस दुनिया इधर की उधर हो जाए, अब हमने इसको नहीं चेंज होने देना, ऐसा भी नहीं है। फमन खाफा में मोहसिन, अगर तो जो कोई खौफ करे वसीयत करने वाले से, किस चीज का खौफ करे, जनाफन का, यानी इसने साइड लिया किसी की, तरफदारी का, औ इस्मन या गुनाह का, ये पता चल गया है कि अब ये वसीयत खोली तो देखा कि भाई इसके अंदर तो ऐसी ऐसी बात लिखी हुई है या गुनाह की बात लिखी, तो क्या करना चाहिए, असलाह बैनहुम, तो इसलाह कर दे उनके दरमियान। कैसे इसलाह करा दी जाए, सारे घर वालों को बिठाया जाए, उनको बताया जाए कि देखें आपके जो मरने वाला था वो इस तरह की वसीयत कर गया, अगर इसको हम पूरा करते हैं तो देखिये उसके ऊपर भी गुनाह आता है, अल्लाह के हाँ इसकी पकड़ हो सकती है। देखिए इसने वारसों को तो वसीयत में से दे ही नहीं सकते, तो इसने उनको दे दिया, तो या फिर किसी को इसने आग कर दिया। अब जाहिर है देखें जब आप एक को हिस्सा देते हैं ना तो दूसरे ज्यादा बढ़ा के दे देते हैं, तो कहीं ना कहीं डंडी मारी होती है, कहीं से कमी की होती है, तो एक बच्चे को इसने आग कर दी है या इसने अपने एडॉप्टेड चाइल्ड को दे दी है और बाकी रिश्तेदारों जो वारिस थे उनका नहीं हिस्सा दिया, किसी तरह की भी तरफदारी हो सकती है, तो देखें इसमें अल्लाह के हाँ इसकी पूछ हो सकती है। तो ऐसा है कि हम इसको शरीयत के मुताबिक इसको कर देते हैं, इसको हम चेंज कर देते हैं ताकि मरने वाले के ऊपर भी कोई बोझ ना पड़े आखरत में और अल्लाह ताला उसको भी माफ कर दे, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, फला इस्मा लही, तो इसमें कोई गुनाह नहीं है। ठीक है ना, बात समझ आ गई। इन अल्लाह गफूर रहीम, फिर अल्लाह ताला बख्शने वाला, माफ करने वाला, रहम करने वाला है, कि फिर अल्लाह ताला हो सकता है कि उसको भी अल्लाह ताला माफ फरमा दे, क्योंकि ये पीछे उसके वसीयत वैसे एग्जीक्यूट नहीं की गई जैसे उसने गुनाह की थी। और देखिए ये हदीस है कि जिसने वारिस की मीरास को कत्ता किया ना, यानी वारिस को हिस्सा देने से मतलब रोक दिया या उसका हिस्सा नहीं रखा, तो कयामत के दिन अल्लाह ताला जन्नत से इसकी मीरास को कत्ता कर देगा। अल्लाह ताला जन्नत में जो उसकी मीरास होगी ना, अल्लाह ताला उससे उसको फारिग कर देगा, अगर उसने, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने रखे है ना इससे, अब हम नहीं इसके अंदर चेंजिंग कर सकते कि एक बच्चा नाफरमान है इसको मैंने कुछ नहीं देना, फलां फरमा बरदार है उसको मैंने ज्यादा देना है, फलां ने मुझे ये दिया तो मैंने उसको ये देना है, तो ये नहीं कर सकते। बेटियों को तो उनका देना नहीं है, उनको तो जहेज दे दिया, फलाने को तो ये नहीं देना, ये आप अपनी मर्जियां चला ही नहीं सकते इसमें, क्योंकि अल्लाह ताला ने हिस्से रख दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आदमी नेक लोगों के अमाल 70 साल तक करता रहता है लेकिन वसीयत में जुल्म करता है और बुराई के अमल पे उसका खात्मा होने की वजह से वो जहन्नमी बन जाता है। और बाज लोग 70 साल तक बादामालियां करते हैं लेकिन वसीयत में वो अदल इंसाफ करते हैं और आखिरी अमर उनका क्या होता है, अच्छा होता है और वो जन्नती बन जाते हैं। ये अल्लाह की हदूद है, इनको हम नहीं क्रॉस कर सकते, इनसे हम आगे नहीं बढ़ सकते, ये साफ अहकाम आगे आएंगे और आप इनको पढ़ेंगे और फिर देखें कि इनमें हम कमी बेशी करने की हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है। हाँ वसीयत के अंदर मैंने जो आपको बता दिया तो वसीयत में आप इस तरह से कर सकते हैं अगर ऐसे हालात कुछ हैं तो। अल्लाह ताला हमें सही इन अहकामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, सही चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे लिए जो ये हम पढ़ते हैं, अल्लाह ताला इसको हमारे अमल में लाने की हमें तौफीक अता फरमाए, क्योंकि ये अहकामात ऐसे हैं कि जो हमारे माशरे में बहुत ज्यादा हम मिस गाइडेड हैं इन मामलात में। और कोई ही घराना होगा, इल्ला माशाल्लाह, हमारे पूरे माशरे में कोई घराना ही ऐसा होगा जहाँ पे इंसाफ के साथ विरासत की तकसीम हो और ये सारे काम किए जाएं, वरना 90%, बल्कि 99% घर ऐसे हैं जहाँ पे विरासत सही तकसीम नहीं होती। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम जैसे अल्लाह ताला का हुक्म है उसी तरह हम चल सके इंशाअल्लाह ताला। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا